ये कौन व्यवस्था करता है? हम लोग समझ नहीं पाते ये कहां से कैसे होता। हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने घर से बहुत परिश्रम करके वर्षा में भी यहां आ रहा हूं और हरि कथा सुन जाता हूं। ये प्रेरणा किसने दी? लाखों लोग तो हैं, क्यों नहीं आते? इसलिए नूरपाभी कृपा ये भगवान की है जिससे कि हम लोग आते हैं। अपनी बहादुरी नहीं है इसमें कुछ, अपनी बहादुरी मत करो। जस कारण निज जन्म स्वयमेव भक्ति, अपने निज जनों को स्वयं वो भक्ति कराते हैं। कब कराते हैं? यदि किसी को किसी कारण से भी थोड़ी सी रुचि हुई भगवान के तरफ में, यहां जहां देखा, क्या करते हैं? व्यवस्था में लग जाते हैं, उसके पास में साधु संतों को भेज करके, गुरु को भेज करके, जैसे तैसे उस पर की बात करते। किंतु उसमें यदि थोड़ा सा अहंकार हो गया, अहंग भाव आया, गुरु वैष्णव की निंदा करने लग गया, अपराध होने लगा, फिर बड़े दुखी हो जाते, बहुत दुखी हो गए। इतना इसको सुजोग दिया और फिर यही उल्टा चल रहा है, तब फिर उसको छोड़ देते हैं। और ऐसे कोई दुराचार का भी काम करेगा, उस पथ से मर गया अपक अवस्था में, कुछ विचलित भी दर दर हो गया, तो उसके लिए कोई बात नहीं। किंतु अपराध उखाड़ देता है भक्ति लता बीज को, इसलिए वैष्णव से लड़ाई झगड़ा, क्या हाथ में क्या, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, निंदा, सब प्रकार के हैं ना, क्या क्या, हम थी निंदन थी वही देश, देश करता है और उनको देख करके वैष्णव को प्रसन्न नहीं होता। इतने लोग सब बैठे हैं, गलती पर ध्यान जाता है, अभी उनको देख करके ये सुनने आ रहे हैं, उनको प्रसन्नता नहीं होती है। और दर्शन में हर्ष वो आनंद नहीं होता है, तो क्या होगा? थोड़ा सा भी गुण देख करके उसके प्रति प्रसन्नता होनी चाहिए। शुद्ध शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना, शुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव भक्तों में आना चाहिए, ये विचार करना चाहिए हमारा ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसा देख करके भगवान अपनी भक्ति अपने जनों को, कब से वो जन हुआ, भले ही दीक्षा न दी, कुछ भी नहीं किया, कहीं हरि कथा सुन लिया और उसके अंदर में हुई यह हो, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व, मैं उनकी भक्ति करूंगा। जहां ये भाव हुआ, वैष्णवों को भगवान व्यवस्था करने उनके पास आएंगे, गुरु को भेजेंगे और हरि कथा सुनाने करके धीरे 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 उसको ले लेंगे। इसलिए वहां से ही जन आरंभ हुआ। और जन कहां समाप्त हुआ? जाकर श्रीमती राधिका तक। स्वयमेव भक्ति कारयेत, स्वयं भक्ति कराते हैं ये। तस्याति तुष्यति परमो उपकर्तु, उपकर्तु, ऐसे निर्भय की कृपा करने वाले ये प्रभु हैं। टीका देखिए, इस प्रकार से ग्रंथ का उपसंहार का अंतिम श्लोक है ये सनातन गोस्वामी जी का। भगवत कृत परम उपकार को स्मरण करके कृतकृतार्थ हो रहे हैं। सनातन गोस्वामी स्वयं भी गदगद हो रहे, आज भगवान की कृपा कैसी, हमारे में प्रेरणा दे करके ऐसा सुंदर उपाख्यान कह रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को आगे वो प्रणाम करेंगे अपनी टीका में, अपनी टीका में ही प्रणाम करेंगे। और किसको प्रणाम करते हैं? चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, जो ऐसे निरुपाधिक कृपालु हैं और उनके असंत प्रिय जो रूप हैं, रूप ही हमारे इस कृति से प्रसन्न हो। रूप गोस्वामी को भी कहा, इसे भगवान की कृपा को स्मरण करके गदगद हो रहे हैं। ये सब समय आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, जो कुछ हम ही कर रहे हैं ये किसकी प्रेरणा से? कृष्ण की प्रेरणा। बिना कृपा के और भी करोड़ों करोड़ों संसार में अगिनत जीव है, वो क्यों नहीं भजन करते? जो हम लोग को इतना तो दिया जो भगवान का भजन करना चाहिए, कभी भले ही मन खराब हो जाता है जब मैं कभी वहां चला जाऊंगा ऐसे करूंगा, किंतु फिर भी प्रवृत्ति तो है ना, इसलिए उस प्रवृत्ति के साथ में भगवान का भजन करना चाहिए, विश्वास के साथ में भगवान की कृपा को देख करके स्मरण करके गदगद हो गए। उन्होंने फिर साक्षात किया, भक्ति भर से आत्मसमर्पण कर दिया और नमस्कार किया, हे प्रभु मेरा जो कुछ मैं आपके चरणों में, हमारा जो कुछ है ये कहां से आया? आपकी कृपा से, चाहे वो चित्त गुरु के रूप में आपने इसको किया अथवा वो कौन गुरु प्रत्यक्ष में, यही गुरु के की बोले प्रत्यक्ष गुरु जे चेतन चेता में, गुरु को भी भगवान का ही स्वरूप समझो। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ में ये प्रणाम कर रहे हैं। निरुपाधि कृपालु भगवान है, कृपा द्वारा आकुल, आकुल माने कृपा करने के लिए, जैसे मैया अपने छोटे बच्चे पर कृपा करने के लिए व्याकुल रहती है, उससे भी कोटि गुण गुरु रहते हैं। भगवान की तो बात थी क्या, भगवान भी ऐसे परम व्याकुल रहते हैं। दिखलाया गोप कुमार के उपाख्यान में, गोप कुमार को भगवान कहे मैं तुम्हारे लिए बड़ा व्याकुल था, जे तुम कब आएगा, तुम कब आएगा यहाँ, हमारी कब सेवा करेगा। और गोपाल जी ने कहा माधवेंद्रपुरी पाद का, कबे कबे माधव आती मोरे करीबे, निरुपाधिक कृपा किसको कहते हैं? बिना किसी उपाधि के, बिना कारण के, कोई भी कारण नहीं है। एक छोटा बच्चा अभी जन्म लिया, मैया उसको प्यार करती है, इसमें निरुपाधिक नहीं है, उसका बच्चा है ना, ममता है। और ये बच्चा बड़ा होगा उसको देकर के खुशी होती है, ये केवल उपलक्षण के रूप में इस उदाहरण को दिया जाए। भगवान इसे कोटि गुण, कोटि माने अनंत कोटि गुण निर्भय सुख कृपालु हैं। इसलिए गुरु उत्तम जो गोपाल राज हैं, नंदनंदन हैं, मैं उनको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। यहां पर गोपराज कहने का तात्पर्य क्या है? गोपराज इति गौरवेन उक्ति गोपी भावेन वा, दो प्रकार से नंद बाबा के प्रति गौरव बुद्धि से ऐसा कह रहे हैं, या कृष्ण के प्रति गौरव भाव से, और दूसरा गोपी भाव में निमग्न है इसके कारण। कौन जन्मेजय जी, जन्मेजय के गुरु विभावित होकर के, गोपी भाव में विभावित होकर के अथवा नंद राज के प्रति गौरव से ऐसा कह रहे हैं। उपदेष्टाओं के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ गुरु है, गुरुओं में भी उत्तम है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के जो शिक्षाएं दी, कृष्ण के रूप में शिक्षाएं दी हैं, बृहद भगवतामृत में भी शिक्षा दी है, जो अंतर में नैवोपयंत क्या उपचितम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापी कृत ऋद्धमुदह स्मरंत, जो अंतर बहिर् तनुभिताम अशुभम विध्वन्वन आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतं विना। भगवान चैत्य गुरु के रूप में बुद्धि योग देते हैं, फूर्ति कराते हैं। यदि वो यदि हृदय में नहीं लाते जाए चलो ऐसे गुरु के पास में भजन करो तो भगवान ऐसा नहीं करें। हम अपने बुद्धि से नहीं कर सकते, हमारा मन जो है ये जड़ है, इसलिए अपने मन से नहीं होगा। हे ईश, अभी इसी की टीका कर रहे हैं, हे ईश आप बाहर में गुरु के रूप में महंत गुरु, बाहर में क्या करते हैं महंत गुरु, महंत गुरु दो, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, और एक है वक्त प्रदर्शक गुरु, इनको भी कम मत समझो, भगवान ही उनके अंदर में प्रेरणा दे करके वक्त प्रदर्शक गुरु हो करके उनको वहां पर लाए। कोई कहते हैं कि वक्त प्रदर्शक का क्या जरूरत, हम तो ऐसे ही आगे, ऐसा मत समझो, ये सभी कृष्ण के ही स्वरूप हैं, बिना इनकी कृपा से नहीं होगा, तो उनको भी भगवान का स्वरूप समझो और शिक्षा गुरु को भी दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक लेवल में है, इसलिए इनको साक्षात भगवत स्वरूप समझो, एक को समझो भगवान का स्वरूप और एक का रूप। तो अंतर में इसलिए जैसा जिस लेवल हो ना, उत्तम जो अधिकारी है ना उसके प्रति उसकी श्रद्धा अपने आप आएगी, वो कहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये सबका अभिव्यक्ति नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने तो ये किया, भागवत परंपरा ली, ये परंपरा को छोड़ दी, इसको हम लोग समझ नहीं पाते, इसी के लिए सब झगड़ा। सजिया कहते हैं जिसे वही लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, शिष्य परंपरा, और वो कहते हैं शिष्य परंपरा नहीं लेकर के भागवत परंपरा होनी चाहिए। हे ईश, आप गुरु के रूप में, बाहर में गुरु के रूप में महंत गुरु के रूप में, अंतर में अंतर्जामी गुरु के रूप में जीवों का अशुभ दूर करते हैं और अपनी भक्ति के प्रतिकूल विषय वासनाओं को दूर कर देते हैं। विषय वासना को दूर करने में हम समर्थ नहीं है, होगा नहीं होगा, एक आदमी साधारण रूप में चाय नहीं छोड़ सकता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, क्रोध करना नहीं छोड़ सकता, कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं। इसलिए विषय वासनाओं को दूर करके बंधु की तरफ में सतबंधु की भांति आप सबको दूर करके उसमें स्वयं बैठ जाते हैं। अतः कवयस्तरेश ब्रह्मायुषापि कृत ऋद्धमुदः स्मरन्त। जो कवि लोग हैं, कवि माने भगवत तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, जो भक्त हैं वो लोग कवि हैं, जो अब मध्यम अधिकारी में करीब पहुंच चुके हैं या मध्यम अधिकार से ऊपर जाने वाले, वो इन चीजों को अनुभव करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जैसी आयु लाभ करके भी क्या करते हैं, कल्प कल्प में आपकी सेवा में नियुक्त रह करके आपके ऋण को शोधने, माने क्या, मध्यमाधिकारी होने पर वो भगवान की कृपा को समझेगा, हमारे पास में भक्त आए हमको कथा सुनने के लिए क्यों, और उसी के द्वारा धीरे धीरे वो बढ़ करके गोप कुमार जो ब्राह्मण था जन शर्मा, वो जब सब कथा सुन ली तो कृष्ण का वो एकदम ऐसा हो गया कि नहीं उनका ऋण चुका सकता है, कोटि कोटि कल्पों में भी उनका ऋण नहीं चुका सकता। परम आपके किए हुए उपकार को स्मरण करके भक्ति रूप परमानंद में निमग्न हुआ करता है, पुनः पुनः माने सब समय क्षण क्षण में उनके उपकार को स्मरण करके भगवान के और उस आनंद में डूब जाता है। इसलिए मैंने जो कुछ कहा, कौन कह रहा, जैमिनी और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अवधर में परीक्षित महाराज तीनों कह रहे हैं, वक्ता जी इसके हैं, ये सब जो कुछ हमने कहा, उपदेश जो तुमको दिया जन्मेजय को, मैया को और इन श्रोताओं को, हम लोगों को, ये कह रहे हैं जो मैंने भगवान की उन्हीं कृपालु जो गुरुदेव हैं कृष्ण, उनकी कृपा से, प्रेरणा से हमने ये जो कुछ कहा। एक वृंदावन ब्रज में ही एक नंद गांव या कहीं पर कोई एक ब्राह्मण था, उसने भागवत पढ़ा इधर उधर और बड़े सुरले कंठ में पढ़ता था और उसकी व्याख्या भी जैसे तैसे वो सुंदर रूप से करता था, साधारण रूप, और उसको अभिमान हो गया जो मैं बहुत सुरीला कंठ वाला हूँ और बहुत अधिक सुंदर रूप से व्याख्या करता हूँ और सब लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। भगवान का ऊपर में उसने नहीं दिया, ये भगवान की कृपा से ऐसा हो। कुछ दिनों के बाद ही मैं, अभी नवयुवक था, उसका गला खराब हो गया धीरे धीरे, फ्रैंकाइटिस थी और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उसका बोली ही बंद हो गई, बस हो गया खत्म, कोई पूछे नहीं। इसे हमारे ऊपर में है, भगवान करुणा करके जहां तक कहा लेते हैं, जो कुछ प्रेरणा देकर के कर लेते हैं, अपने बस की बात नहीं। इसलिए गुरु और वैष्णव और भगवान पर इन चीजों का रखना चाहिए, ये इनकी कृपा से हो रहा है। तो ये सुन करके सनातन गोस्वामी भी ऐसा कर रहे हैं और इस प्रकार से अंतर्ज्ञानी दृष्टि से आत्मसमर्पण और तहां से ही परमोत्तम जानिए। इसलिए आत्म अंतर्ज्ञानी रूप में दृष्टि से उनको क्या करना चाहिए, उनके प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। अतःपर निरुपाधिक कृपाकुल गुरुत्वमय लक्षण प्रदर्शन कर, उन्होंने कहा कि निरुपाधिक गुरु है उसके लिए उसका लक्षण बतला रहे हैं। लक्षण में बतला रहे हैं यह श्री गोपराज तनय, इसके द्वारा गोपराज तनय नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण स्वयं ही कृपा करके और सब लोगों को भक्ति में प्रवर्तित कर रहे हैं। कैसे उपकारी बंधुओं की भांति भक्तों के प्रति अत्यंत प्रीति भी हुआ करते हैं, प्रीति लाभ करते हैं, लगा रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, स्वयं आनंद किसको हो रहा है। अभी हम लोग जो कुछ थोड़ा सा इतना भी भजन में लगे हुए हैं, अनर्थ रहते हुए भी हमको उतना आनंद होगा कि हो रहा है कि नहीं है, मैं नहीं समझता। आनंद किसको हो रहा है, कहां नरक में डूबा हुआ था, ये पैखाने का कीड़ा था कुछ जन्म पहले और आज ये उठ करके यहाँ तक आया है, हमारी कथाओं को सुन रहा है, मथुरा वृंदावन में है, तो इसका आनंद किसको अधिक हो रहा है। ऐसे निरुपाधिक जैसे एक छोटा सा बच्चा अब खड़ा होना सीखा और उठ करके अपने दोनों पैरों पर इधर उधर करता हुआ थोड़ा सा चलना सीखा, तो बच्चे को आनंद होता है ना मैया को आनंद होता है, बाप को, बच्चे को आनंद होता है कि नहीं? नहीं नहीं, उसको उतना आनंद नहीं। बाप को अपने बेटे की तुतली बोली सुन करके किसको आनंद होता है, बच्चा तो हंसता तो है ठीक किंतु उपलब्धि नहीं करता, किंतु मैया और बाप इसलिए वो बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान को प्रसन्नता होती है, जो आज वो कहां था आज कहां रह करके भगवान का भजन हम लोगों को नहीं होता। बात तो ये ठीक है, सब ऐ पुंसान परो धर्मो जो तो भक्ति का दुख जे अहत नहीं, और एक और क्या श्रवण के लिए कहा गया, हाँ धर्म सुनिश्चित कुंतक विश्व कथा सुजत, वो बतला रहा था जयात्मा संप्रसिद्धति, जयात्मा संप्रसिद्धति, भक्ति करने से आत्मा प्रसन्न होती है। माने क्या, लोग कहते हैं जो आत्मा हमारी आत्मा प्रसन्न, ये बात ठीक है किंतु भगवान के प्रसन्न होने से तब ये होता, पहला वो इसे भगवान ही प्रसन्न होते हैं इस भक्ति को जो हम भगवान की सेवा करते हैं। तो हमको प्रसन्नता होनी चाहिए, किंतु प्रसन्नता हमसे भी अधिक किसको होती है? कृष्ण को प्रसन्नता होती है। आज भगवान के लिए कहा, इसलिए जात्मा में भी वहां पर भगवान को समझे, भगवान को प्रसन्नता। हम यहां पर बैठे हुए हैं, कोई सूंघ रहा है, कोई ऊंग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बैठे हुए हैं तो यहां तो ये प्रसन्नता हो रही है किसको? हम लोगों से अधिक प्रभु को हो रही है। और यदि श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक कोई सुन रहा है तो कहना ही क्या, उनको संतोष होता है, वही इसको बतला रहे हैं। कृष्ण स्वयं ही भक्ति कराते हैं, उपकार कर रहे हैं, और फिर भी सोचते हैं कि ये हमारे प्रति, मैं इसका ऋणी हो रहा हूं, ये सुन रहा है, इसका ऋणी ऋणी कौन हूं मैं हो रहा हूं। अर्थात निज नित्य दास और निज सेवक के जिन्हें स्वयं तदी अधिकार व शक्ति इत्यादि विचार व अपेक्षा ना करियाई, निज श्रवण कीर्तन लक्षणा भक्ति आचरण कराइया, सर्वेन्द्रिय भक्ति प्रवर्तन द्वारा भक्ति प्रति अतीव संतोष युक्त होते, वो प्रेरणा दे करके भजन कर की तरफ में, हरि कथा सुनने की तरफ में प्रवृत्ति दी, श्रद्धा दी, और धीरे 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 उसके अंदर में भक्ति प्रवेश करा करके अत्यंत संतोष अनुभव करते हैं, प्रेम स्थिति लाभ करते हैं। अत्यंत संतोष का दृष्टांत क्या है? जिस प्रकार से परम उपकारी सखा अपने सखा का संतोष विधान करके प्रसन्न हुआ करता है, माने जैसे कोई मित्र किसी का आया घर में, उसको खिला पिला करके जितना उस जो आने खाने वाला है उसको संतोष नहीं होता, उसे संतोष अधिक जाने वाले घर में दमाद आया। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझे, घर में दमाद आया, उसको खिलाया पिलाया, आनंद किसको हुआ? सास और ससुर को और उसकी पत्नी को। खा रहा है वो, उसको प्रसन्नता नहीं हो करके उसको भी होगी, किंतु उससे भी अधिक होगी इन लोगों को। उसी तरह से प्रभु को अपनी भक्ति करने वाले, श्रवण कीर्तन करने वाले को देख करके प्रसन्नता होती है। ऐसे उपकारी हैं, इसलिए इनको जगत गुरु कहा गया। ऐसे जगत उपकारी जो हैं, ऐसे संत लोग हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, इनका ऋण कभी मत भूलो भाई। अथवा अजय भजनकारी के प्रति कैसा वो संतोष लाभ करते हैं, सुनो अपने निज जन जिस प्रकार से उनके प्रति भक्ति का आचरण के द्वारा तहां परमोत उपकार करिया था, कृष्ण से इस प्रकार तहां देव सहित वांछित फल प्रदान करिया था। कहते हैं कि कृष्ण को जिस प्रकार से कोई भजन करता है, जो चाहता है कामना करता है उसको फल दे दिया करते हैं प्रसन्न होकर। जैसे ये यथांग माम प्रबद्धंते ताम तथा बजाम, दे दिया प्रसन्न हो गए, ये दे दिया। फिर इसमें करते हैं पूर्व पक्ष है, उसमें करेंगे। यदि कृष्ण ने का कोई भजन करता है, जो कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण उनके वांछित फल को दे दिया करते हैं, यह बात ठीक है, किंतु वह दान व कृपा निरुपाधिक कैसे हुई? उसने भजन किया उसको वो दिया, उसने कामना किया उसको दिया, तो कृष्ण की निरुपाधिकता कहां हुई? हेतु तो उसमें से हेतु है, उसने भजन किया उसको दिया। देवताओं में हम भजन करते हैं, दुर्गा जी का भजन किया, वो सूरत महाराज या किसने लोगों को जानवरों को काट करके उनका उसको स्वर्ग जाने के लिए। इसी तरह से उनको स्वर्ग मिला, और अभी देखते हैं कि उनकी कामनाओं को वो पूर्ण कर देते हैं, हेतु से उनकी पूजा के हेतु से उनका वो दे दिया। इसमें हेतु की क्या हुई? कहे कृष्ण के लिए ऐसा मत सोचो, जेतु कहार कृत भजनो, जैसे कृष्ण का भजन किया किसी ने, सकाम ही किया किंतु कृष्ण का भजन किया, ये भजन किसने कराया? वृत्ति किसी ने दी? और फिर प्रसन्न हो गए, अप्रसन्न होकर के उसको वो चीज भी दिया, ये सब है चुकी है। कृष्ण में एक बात है, कोई कामना से भी भजन करे कोई हर्ज नहीं, उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, उसकी कामना को पूर्ण करा करके धुओं की भांति और पुनः उसको संशोधन करके भक्ति मार्ग में लगा दे, ये भगवान की बहुत कृपा है। देवता लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए कृष्ण के प्रति ऋण कभी नहीं चुकेगा। देखो कैसे बड़े दयालु हैं और ऐसे हैं, न पारे हम निर्वाद दर्शन जीजा का, उनकी शक्ति है और उनके प्रति ऋणी बन गए, तो गोपियां भी कम नहीं, गोपियों ने उधार माने उसका ब्याज समेत चुका दिया और उनकी ऋणी बन गई। इस वाक्य के द्वारा जब मैं ऋणी हो गया, हम लोग आपकी ऋणी पूर्ण हो गए। इसलिए ये बाहर गुरु के रूप में और भीतर में अंतर्जामी गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में ये कृपा कर देते हैं, समझने नहीं देते, ये उनका अहेतु की कृपा निरुपाधिक कृपा है। यहां तक कि स्वगतन विनक्ति, स्वगति माने क्या है, पार्षद गति, पार्षद गति माने क्या, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रस के जितने भी परिकर का ये भाव है, वहां तक जहां जिसका अधिकार और योग्यता है वहां तक उसको प्रदान करते हैं। कितना बजा, 37 हो गया, आज यही तक रखने दो, कल बाकी को पूरा करूंगा और दोनों उपाख्यानों को संक्षेप में बतलाऊंगा और इसके बाद में समाप्त होने के बाद में हम लोग ग्रंथ की आरती पूजा प्रसाद लेकर के सनातन गोस्वामी के प्रति जन्मेजय जैमिनी और परीक्षित महाराज के प्रति भी हम लोग श्रद्धा अर्पित कर आज यहीं तक। सब वैष्णव ने लोकनाथ दास गोस्वामी के संबंध में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें कही, उनका सेवामय जीवन, आदर्श भगवान के नाम के प्रति निष्ठा, सुतीव्र वैराग्य, महाप्रभु के प्रति उनका भाव, उनका शिव भावपूर्वक शिव विग्रह सेवा, धाम के प्रति निष्ठा इत्यादि आदर्श स्थानीय है। भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी दोनों नवद्वीप के रहने वाले थे और महाप्रभु के ज्ञाति कुटुंबी लगते थे लौकिक दृष्टि से। उनके बुआ जी के या किसी के लड़के भूगर्भ गोस्वामी या ये थे और महाप्रभु जी से उम्र में लोकनाथ दास गोस्वामी बड़े थे, भूगर्भ गोस्वामी भी बड़े थे। महाप्रभु जी ने इनको वृंदावन प्रकाश करने के लिए, जब वृंदावन में सब तीर्थ सब लुप्त हो गए हैं, धाम लुप्त हो गए हैं, कोई नहीं जानता, राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन काम्यवन बहुलावन मधुबन कहाँ है कोई नहीं जानता, महाप्रभु जी ने बतलाया जी मैं आ रहा हूँ, तुम लोग चल करके वहां पर भजन करो और धाम के स्थानों को प्रकाश करो। जिस समय वो आए, ये पहले व्यक्ति दोनों हैं, उस समय तक वल्लभाचार्य जी हितहरवंश स्वामी और कोई नहीं आए थे, रूप सनातन भी नहीं आए हैं, कोई भी वहां पर भजन नहीं करता था, वृंदावन में कोई मंदिर इत्यादि नहीं था।
यहाँ तक कि वृंदावन का कोई स्थान भी अभी प्रकाशित नहीं हुआ, राधा कुंड कहाँ है ये भी नहीं हुआ। ये पहले गोस्वामी है भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, महाप्रभु जी ने इनको यहाँ पर भेजा। महाप्रभु स्वयं भगवान है, कैसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं और उनको वन जंगल में यहाँ पर भेजा है। महाप्रभु की के पास में रहना चाहते हैं किंतु लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी सब कुछ त्याग करके महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार में उसमें वृंदावन ले आए, जहां पर कि रामानंद, स्वरूप दामोदर, महाप्रभु के अगणित भक्त लोग सब वहां पर रह रहे हैं, कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। अभी तो लीला के पहले, अभी नवदीप के समय की बात है, संन्यास लेने के पहले की बात, ये सब छोड़ छाड़ करके और उनको भेजा और उनके आदेश को पालन। आदेश पालन करना ही गुरु वैष्णवों की ये भक्ति है। अभी कालाचंद ब्रह्मचारी जी ने भी बहुत सुंदर बातें कही, प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छे अच्छे सब बातें, इन सब का पालन करने से अपने आप भक्तजन हो जाएगा। अभी किसी ने ये बतलाया, नाम करना ही भजन है, हरि कथा श्रवण ही भजन। माने क्या भजन, माने क्या है ना, सेवा का नाम ही भजन। भज धातु सेवायाम, सेवा छोड़कर के नाम कुछ है? मैं सेवा कुछ नहीं करता, मैं दिन रात हरि नाम करता, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये किन के लिए है? निर्विशेषवादियों के लिए है, एकदम पक्का निर्विशेषवादी, भजन छोड़ करके कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। लोकनाथ दास गोस्वामी जी वृंदावन में रह करके निर्जन स्थान में भजन करते थे और नाम करते 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 कोई आया, पानी मांगा, उसको नहीं दिया, और नरोत्तम ठाकुर जी ने दिया तो उनको कहा जी घर जाओ। तो ये क्या है, भजन आनंदी है ना, क्या करते हैं, हरिनाम कर रहे हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि क्या सेवा कर रहे हैं, कल्पना से बाहर है। उनका नाम नामी दोनों अभिन्न है, वो राधा कृष्ण की उस समय में सेवा कर रहे हैं, कितनी तरह की लीलाएं उनके अंदर में स्फूर्ति हो रही हैं और उसमें डूबे हुए वो साक्षार्थाती सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा, उनकी, उनका नाम हम लोगों जैसा अपराध अनर्थ युक्त नाम नहीं, वो लोग सेवा में निमित्त हैं, वो केवल नाम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो। वैसी सेवा की तो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते जो वो क्या सेवा उस समय में कर रहे हैं। वो उसी वेश में, उसी भाव में क्या सेवा कर रहे हैं, जैसे मंजुलाली जी कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। किसकी? राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। क्या करती हैं? दिन रात उसी में तन्मय हैं और हरिनाम कर रहे हैं और उसकी सबकी स्फूर्ति। महाप्रसाद खाओ मत, हरिनाम मत करो, हरिनाम की सेवा करो, महाप्रसाद की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, हरि कथा श्रवण की सेवा करो, श्रद्धा के साथ में सेवामय जीवन हो, ये उनकी प्रधान शिक्षा है। उन्होंने कुछ ये नित्य सिद्ध, नरोत्तम ठाकुर जी भी नित्य सिद्ध हैं, लोकनाथ जी भी नित्य सिद्ध हैं, अपने जनों के द्वारा जगत में ये लोग शिक्षा देते हैं कैसा भजन का जीवन होना चाहिए। उनको भजन नहीं करना, उनका भजन हो गया है, उनकी सेवा है, किंतु महाप्रभु जी की इच्छा से जगत में हम लोगों के लिए आए, आदर्श दिखलाया कि कैसे भजन होता है। तो वो उसमें निविष्ट है। कोई लोग ये समझते हैं हरिनाम अलग है, सेवा अलग है। हम लोग सेवा करने के लिए, बैगन लगाने के लिए
ये सब साफ करने के लिए, कोई परिश्रम करने के लिए हम यहाँ पर विद्या पढ़ करके आए हैं? नहीं नहीं है। हम लोग तो केवल बैठ करके भजन करेंगे। ये नरोत्तम ठाकुर जी कैसे थे? राजा के लड़के, लाखों नौकर चाकर, कुछ पढ़ लिख करके वहां से आए था ना, ऐसे ही आए थे। राजा राजकुमार 16 वर्ष तक क्या निरक्षर होकर के घर में बैठा होगा, ना कि कुछ पढ़ लिख करके आया होगा? 16 वर्ष की अवस्था में कोई निरक्षर साधारण में नहीं रहता, राजा का लड़का रहेगा। वो श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास, ये एकदम संस्कृत इत्यादि सब कुछ पढ़ लिए थे वहीं। इनका कुछ पढ़ना बाकी नहीं था, एमए पीएचडी डीलिट जो कुछ तो वो सब कुछ पढ़ लिए थे। अब पढ़ करके यहां रघुनाथ उनके जीव गोस्वामी के पास में आए। क्या पढ़ा उन्होंने? भजन कैसे होता है, सेवा कैसे होती है, सेवा में कैसे आदमी, नाम क्या चीज है, भक्ति क्या है, वैष्णव की सेवा क्या है, गुरु की सेवा क्या है, ये सब सीखने के लिए आए और उनको शिक्षा दी। एक राजकुमार पढ़ा लिखा इतना बड़ा भारी धनी यार, इतना शौकी राजकुमार, सुंदर कैसा, और पैखाना किस नियत से, उनका वही भजन है, यही भजन है। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी हमारा भगवत दर्शन कैसे होगा, हम उसके लिए घर बार छोड़ करके आए, तो तुम्हारा भी भगवत दर्शन नहीं हो रहा है, तुम हरिनाम नहीं करता, तो नाम तो करता हूं, तो जाओ, नाम ही भगवत दर्शन। भगवान का नाम करना और दर्शन करना एक, बल्कि नाम करना भगवत दर्शन से भी अधिक है, ऐसा विश्वास करके तुम हरिनाम करो। इसलिए सेवा में जीवन होना चाहिए। आज रात अधिक हो गई है, आज उनके चरण में हम पुष्पांजलि अर्पित करके हम भी वैसा ही जीवन हमारा भी हो, आप लोगों का भी जीवन ऐसा ही सेवामय हो, भजनमय हो, प्रार्थना करता हूँ। कल इनके संबंध में जो बाकी लोग रह गए हैं वो और मैं भी कुछ इनके चरणों में और पुष्पांजलि देने की अभिलाषा रखता हूँ। आप लोगों का भी जीवन उनकी जैसा हो, एक मिनट भी इधर उधर बर्बाद न हो। यहाँ की या वैष्णव के संग में जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ भजन है। यहाँ का चलना भी भजन है। एक आदमी चला और जाकर तो उधर से घूम कर क्या परिक्रमा हो गई कि नहीं? एक तुलसी का पत्ता है उसको उठा करके इधर साफ कर दिया, ये भजन नहीं है? इसलिए सबको सेवाओं को भी भजन समझो। यदि वैष्णव की सेवा मिले, हम कोटि कोटि जन्म, प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है, कोटि कोटि जन्म तक मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं यदि वैष्णव की सेवा और भजन के वृत्ति मिल सके। एक जन्म ही नहीं, उन्होंने कहा जैसे वैष्णव की सेवा करने के लिए कोटि कोटि लोगों के ब्रह्मांड का चूर्ण कर देना चाहता हूं उनकी सेवा प्राप्ति करने के लिए, मैंने मायावाद इत्यादि ये सब के लिए। वैसे हमारा जीवन सेवामय हो, प्रेममय, परस्पर प्रीतिमय हो। किसी चीज को थोड़ा सा ऐसा मत समझो ये हमारी मान सम्मान का ये व्याघात, क्यों, इसे हरि कथा सुनने को मिल रही है। आज जगत में कहीं भी चले जाओ ऐसी सुंदर कथाएं कहीं नहीं मिलेगी, इसके लिए हमको करना है। आखिर स्कूल में जाते हैं तो कुछ तो फीस लगता ही है, ऐसे ही मिलता है आजकल से स्कूल में 300-400-500 रुपया फीस लेना। स्कूल कॉलेज में ये सब शिक्षाएं देंगे जो यहां पर होती है, इसके लिए कुछ भी फीस नहीं, अंततः श्रद्धापूर्वक जो कुछ थोड़ा सा है इसको भी तो कर सकते हैं। इसलिए यदि नरोत्तम लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी इत्यादि का जीवन चरित्र से कुछ शिक्षा लेना है तो भजनमय सेवामय हमारा जीवन हो, वैष्णवों के प्रति आदर हो जैसे उनका था, कोई भी किसी से प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, दिन रात हरिनाम करते हैं। ठाकुर जी अपने आप उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए विनोद बिहारी के रूप में, राधा विनोद के रूप में उनके पास में आ गए। कभी सिर पर रखते हैं, कभी आंखों पर रखते हैं, कभी हृदय में रखते हैं, कभी हृदय के अंदर में रखेंगे, क्या करें, ऐसी सेवा करते हैं। प्रेममयी जरा देखो तो, ऐसे गुरु की सेवा करने के लिए उनकी पैखाना साफ करते हैं। इसलिए हमारा जीवन भी उन्हीं के समान, वचनों के प्रति आदर करना हम लोग सीखे, नाम के प्रति ऐसे निष्ठा हो, आलस्य प्रमाद न हो। अभी कहा जे साठ घड़ी में, साठ दंड में, छपान्न दंड साधन भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कभी कभी वो भी नहीं। और हम लोगों का जीवन देखो, जीवन हम लोगों का सौभाग्य में है ये बात ठीक है, हम लोग दुर्भागा नहीं है ये भी ठीक है, किंतु दुर्भागा गंगा के निकट रहते हुए भी नमकीन कुएं का खारी और गंदा जल पीना चाहते हैं, गंगा का पानी नहीं पीना चाहते, यही हमारा दुर्भाग्य है। इसे लोकनाथ दास गोस्वामी जी हम पर कृपा करें, उनके आदर्शों को लेकर के हम लोग भजन पथ पर अग्रसर हो सकें, भजन की दुर्लभता को और भजन जो क्या चीज है रत्न, इसको समझने की हम लोग चेष्टा बंधा कर सकते हैं। कल बाकी जो लोग नहीं बोले हैं वो लोग भी बोलेंगे अपने अपने भाव, बहुत सुंदर सुंदर भाव। अभिना परादलक्ष्मे कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना नमस्ते चरणं गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय ज्ञान प्राव्रजन्तमनुते समपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसस्मि सवैवास्मि सवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम शरणं। सरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि के मूर्तिमान विग्रह थे। चैतन्य चरितामृतकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका आदेश लेने गए उनसे, जब मैं चैतन्य महाप्रभु जी की का जीवन चरित्र लिखूंगा आप मुझको आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा किंतु इस शर्त पर यह हमारा उसमें कोई नाम उल्लेख मत करना। तको अमानी ना मान दे, कोई भी मान नहीं चाहते थे और सब समय कीर्तन में व्यस्त रहते, प्रेम का साथ, प्रेम और दैन्य दोनों एक चीज है सनातन गोस्वामी ने बतलाया है, नामांतर केवल भेद है। कैसे दिन ही न होकर के लोग भजन करते थे ये, तब तक फिर ये प्रचार कहां हुआ, प्रचार किया उन्होंने, ऐसे आचरण के द्वारा स्वयं प्रचार हो जाता है। लोकनाथ गोस्वामी को कौन नहीं जानता, जैसे उनके शिष्य नरोत्तम ठाकुर जी विश्व में सर्वत्र प्रचार किए, जने जने ब्रह्मांड तारीते जने जने धरे शक्ति, एक ऐसा ऐसे ये लोग हैं। तो इस तरह से यदि सदाचार भक्ति के आचार विचार में यदि कोई प्रतिष्ठित हो और वैसा भजन करने वाला हो तो अपने आप प्रचार स्थायी रूप में होता है, और जो लोग प्रचार करते हैं आचार नहीं करते हैं वो हजार प्रचार करने पर भी वो प्रचार स्थायी नहीं होता, कुछ दिन होकर के चमक दमक होकर के फिर वो बेकार हो जाता है। इसलिए रूप सनातन जी ने जो प्रचार किया है, जी गोस्वामी ने जो प्रचार किया, आज उनको कौन नहीं जानता है, उन्हीं के भित्ति पर हम लोग खड़े हुए हैं। उनके अंदर में ऐसा प्रेम
जो ठाकुर राधा विनोद जी खुद उनके पास में चले आए। कहाँ पर भजन करते थे? कहीं एक जगह नहीं, संख्या पूर्वक वो भी उसी में है। कहाँ कहाँ वो भजन करते थे? वृंदावन में सर्वत्र, किंतु विशेष रूप से कुछ दिन तक वहाँ पर थे खैरावन में। खैरावन नंदगांव के पास में कहीं 2-3 मील दूर पर, और पासी में छत्रवन में ही रहते। ये सब किसकी लीलाएं हैं? राधा कृष्ण के मिलन की लीलाएं हैं, विलास की लीलाएं हैं। छत्रवन विशेष करके, वही छत्रवन के पास ही में किशोरी कुंड एक गांव है, उमराव गांव में, जहाँ पर राधा जी को उमराव बनाया गया, कृष्ण ने उनका छत्र धारण किया वहां पर। ऐसे स्थलों में लीला का चिंतन करते हुए भजन करते थे, जिससे कि वो लीला सब सब सहज भाव से उनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त करें। ऐसे स्थानों में भजन करते थे। अभी भी उनके छत्र वहाँ खैरावन में वो स्थान है, एक सरोवर के किनारे है। हम लोग गए थे एक बार, रात में गए इसलिए देख नहीं सके, इनको हम पहले भी गए हुए हैं, वो देखे हैं स्थान। निर्जन बंद है। अब हम लोग बृहद भगवत तामस की कथा पूरी की। अब संक्षेप में प्रथम और द्वितीय खंड की कथा हम बतलाएंगे, जिससे कि सबको याद रहे। सनातन गोस्वामी जी इस कथा के प्रकाशक हैं। कथा तो नित्य है,